Om, 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 om. जैसे धर्म के सोपान होते, धर्म की सीढ़ियां होती है, ऐसे अधर्म की भी सीढ़ियां होती है। अधर्म की सीढ़ियां और धर्म की सीढ़ियां, धर्म किसको कहते हैं ये समझ लो। ये सुख दुख का भोग देने वाला जो निमित्त है उसको बोलते धर्म। सुख दुख का भोग देने का जो निमित्त बनता है उसको बोलते धर्म। ईश्वर से जुदा काल मन समय नहीं है, ईश्वर से जुदा आत्मा नहीं है। अगम लोक नहीं है और ईश्वर से जुदा स्वभाव नहीं है, धर्म भी नहीं है। उद्धव ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, ये जो संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन आदि है, शरीर के भीतर मन है, ये शरीर में रहते हैं तभी मुक्ति होती है या ये सब मिट जाते तभी मुक्ति होती है? इंद्रियां देखना सुनना चखना और मन, ये रहते रहते मुक्ति होती है कि ये मिटते मुक्ति होती? और आप जैसा कुशल प्रश्न को समझने वाला, और कुशल व्यक्ति वह है कि सामने वाला जहां से प्रश्न करता है, प्रश्न के मूल में उसकी शंका किस प्रकार की, वो क्या चाहता है। नहीं तो प्रश्न करता जाएगा और उत्तर देने वाला शब्दों की जाल बुनता जाएगा, उसके प्रश्न से सामने वाले को संतुष्टि तृप्ति नहीं होगी। कृष्ण प्रश्न समझने वालों में शिरोमणि है, प्रश्न का बाप कौन है? जो प्रश्न पूछ रहा है उसके प्रश्न पूछने में मूलभूत उसकी भूल कहां है, क्या नहीं समझ रहा है इसलिए सवाल पूछ रहा है, ये बहुत ऊंची बात है। तो श्री कृष्ण जान जाते थे कि ये क्या नहीं समझ रहा है जिस विषय में ये प्रश्न कर रहा है। तो उद्धव कहते हैं प्रश्न समझने वालों में आप शिरोमणि, तो ये खाने पीने देखने सुनने वाली इन मन विचार करने वाला निर्णय करने वाली बुद्धि, ये सब रहते रहते आदमी मुक्त होता है कि इनके मिटने से मुक्ति होती है? अगर इनके मिटने से मुक्ति होती है तो ये मिटने के बाद क्या रहता है? अगर इनके होते होते मुक्ति होती है तो किसकी मुक्ति होती? मेरे को तत्वनिष्ठा हो जाए, मैं दुखों से छूट जाऊं। तत्वनिष्ठा हो जाए मतलब दुखों से छूट जाऊं, तत्व में कोई दुख नहीं है। तत्व किसको बोलते हैं? परमात्मा को। सोना तत्व है और गहने उसका विस्तार है, परमात्मा तत्व है और जगत उसका विस्तार है। तो तत्व को पाना हो और दुख से छूटना हो तो जगत की आसक्ति देखना सुनना सुंघना अमन बुद्धि ये तो रहता है, लेकिन इसमें से आसक्ति मिट जाए और तत्व का ज्ञान हो जाए, अथवा इसमें अहंता ममता जो है वही दुख देती है, बंधन करती है। परमार्थ में न बंधन है न मुक्ति है। बंधन और मुक्ति इस दृश्यमान जगत को सामने रखते हैं, मन बुद्धि में बैठते हैं, तब बंधन मुक्ति का सवाल उठता है। वास्तविक स्वरूप में कोई बंधन नहीं है। आकाश को कौन बांध सकता है, लेकिन फिर भी दिखता है कि आकाश देखो कई रूपों में बंधा है, कहीं मठ में बंधा है, कहीं घड़े में बंधा है, कहीं हृदयों में बंधा है। तो ये सारे घड़े और मठ ये सब टूटने के बाद आकाश मुक्त होगा, ये कहीं जाएंगे तब मुक्त होगा? सब टूटने के बाद आकाश की मुक्ति का सवाल नहीं है, सब रहने से आकाश की मुक्ति और बंधन का सवाल नहीं। आकाश को आकाश जान ले। आत्मा किसको बोलते हैं? जो मैं है उसी का नाम आत्मा है। दुष्ट परिस्थिति से मिल गया तो हो गया ख आकाश, आकाश रूप अपना आत्मा है। दू से मिल गया तो हो गया दुख, और सुविधा सु से मिल गया तो हो गया सुख। तो सु भी आता है दू भी आता है, ख जो का त्यों रहता है। सुख आता है दुख आता है, तो दू आया और सु भी आया, तो दू में भी ख और सु में भी ख, तो ख से ही दिखता है दू जो अवांछनीय है, वो भी चिदाकाश से दिखता है। तो जुड़े नहीं तो हो गई तत्वनिष्ठा। तत्वनिष्ठा कौन करेगा? तत्वनिष्ठा तत्व करेगा कि अतत्व करेगा? भगवान को कौन पाएगा? शरीर भगवान को पाएगा कि मन भगवान को पाएगा कि बुद्धि भगवान को पाएगी? एक सवाल। दूसरा सवाल कि शरीर नश्वर है, फिर उन नश्वर शरीरों की, गरीबों की, गुरु की, किसी की भी सेवा करते तो नश्वर से शाश्वत कैसे मिलेगा? ध्यान देना, ये दोनों प्रश्न विलक्षण है। तो नश्वर से शाश्वत कैसे मिलेगा, अनित्य से नित्य कैसे मिलेगा? वास्तविक में भगवान कहते हैं स्वयं, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो आप यज्ञ करते इंद्र को, वरुण को, इनको उनको प्रसन्न करने के लिए अथवा वातावरण को शुद्ध करने के लिए, तो भूखे को अन्न देना भी यज्ञ गिना गया, प्यासे को पानी देना भी यज्ञ में, जिसको जिससे दुख की निवृत्ति हो और उसका मंगल हो, ये काम करना यज्ञ हो जाता है। यज्ञ भी दो प्रकार का होता है, एक संसारी इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ करते और एक भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते। तो यज्ञ का फल कौन भोगता है, भगवान का भोग क्या है? भगवान कहते भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या का फल मैं ही भोगता हूं। तो यज्ञ भी नश्वर से करते, तप भी नश्वर शरीर से काटते लेकिन उसका फल चैतन्य शाश्वत रूपता है। माँ बाप का शरीर नश्वर है लेकिन बेटा सेवा करता है तो नश्वर शरीर का तो निमित्त होता है, सेवा उनके चित्त में शाश्वत सत्ता की होती है और कर्ता भी शाश्वत सत्ता से है। तो सेवा करने से अपने शरीर की आसक्ति मिटती है, अपनी नश्वर आवश्यकताएं में शांति होती है, सुख। सेवा करते माना दूसरे को सुख देते, दूसरे को सुख देते तो अपने सुख की लोलुपता छूटती और सारे दुख सुख के पीछे ही आते। जितना मानिया भोग उतना भया रोग। सुख की लालच से ही दुख खींचे आते। तो आवश्यकता और इच्छा, आवश्यकता होती है तत्व की, सच्चे सुख की, लेकिन इच्छा होती है गलत साधनों की। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए तो मैं सुखी हूं। तो मिलने में पाने में प्रवृत्ति करेगा और भोगने में भी प्रवृत्ति करेगा, और पाने में और भोगने में प्रवृत्ति हुई तो पराधीनता और थकान आएगी। इसीलिए इन भोगों से और आसक्तियों से उपराम हो, प्रवृत्ति मात्र थकाएगी। ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं जिसमें शक्ति का ह्रास न हो। प्यारे से प्यारा पति हो, पत्नी हो, और प्रवृत्ति करके एक दूसरे से सुख ले, थकते। प्यारे से प्यारा भोग और प्रवृत्ति करके लेते तो भोगने के बाद थकते। तो चित्त को आवश्यकता में लगाना, आवश्यकता है सच्चे जीवन की, तत्व की आवश्यकता है, और इच्छा होती है तत्व की आवश्यकता है जीव को, और शरीर को आवश्यकता है अन्न जल पानी आदि की। तो शरीर की आवश्यकता पूरी कर लो और अपनी आवश्यकता पूरी कर लो तो आराम से सुखद जीवन हो जाएगा। हम शरीर की आवश्यकता इच्छा का जामा पहरा के पूरा करते कि ए भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए। अब सादी सुधी रोटी से, आरोग्यप्रद भोजन से हम जी सकते हैं, लेकिन टेस्ट ले, आरोग्यप्रद वस्त्रों से हम जी सकते हैं लेकिन चमक धमक वाले चाहिए, आरोग्यप्रद घर से हम घर बना के जी सकते हैं लेकिन ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इच्छा का जामा शरीर की आवश्यकता में इच्छाएं घुसेड़ देते और अपनी आवश्यकता में कल्पना घुसेड़ देते कि वो हमको तो ईश्वर पाना है, और अभी ईश्वर नहीं है, मरने के बाद मिलेगा, अथवा ऐसा करेंगे तब मिलेगा, वैसा करेंगे तब मिलेगा, वहां जाएंगे तब मिलेगा। जैसे शरीर की आवश्यकता में इच्छाएं कल्पनाएं बढ़ा देते हैं कि टीवी होगी तो मजा आएगा, इतना ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उलझ जाते हैं। ऐसे तत्व को पाने में, परमेश्वर को पाने में भी कल्पना कर देते कि हम तो अयोग्य हैं, इतनी साधना करें, इतना ये करें, फिर कहीं मिलेगा तो मिलेगा, हम तो गृहस्थी हैं, संसारी हैं। आवश्यकता क्या है? जो ईश्वर को नहीं मानते उनको भी श्री कृष्ण ने थप्पड़ मार दी। क्या ईश्वर ईश्वर बोलते हो? मैं हूं ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर मैं हूं, महेश्वर हूं। तो श्री कृष्ण अपने महेश्वर स्वभाव को जानते और अपने शरीर को ही मेहमान कर उलझ रहे, इतना ही फर्क। हर मास के देह को मैं मानते हैं और देह से संबंधित वस्तुओं को मेरा मानते, इसलिए बंधन होता है। मर न जाए इसका भय होता है, क्योंकि अपनी अमरता को नहीं जानते। ये चीज छूट न जाए, चली न जाए, और चली न जाए भय रखने से क्या चीज रुक जाती है? जिसको जाना होता है चली जाती, जुआनी चली जाती, चीजें चली जाती, संबंध चले जाते। जो जा रहा है वो जा रहा है, और जो रहता है वो रहता है। तो तत्व का कभी वियोग नहीं हुआ। और वियोग करना चाहो तो भी नहीं हो सकता, लेकिन उस तत्व की प्रीति, तत्व में विश्रांति के बिना तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय वाला यत्नशील। मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय, उस तत्व में मन बुद्धि अर्पण करे। तो मन बुद्धि अर्पण कैसे होगा? जहां स्वयं होगा वहां मन बुद्धि आ जाएगा, जहां स्वयं होगा वहीं मन बुद्धि होगा। स्व को शरीर मानेगा तो मन बुद्धि शरीर में होगी, स्व को जाति वाला मानेगा तो मन बुद्धि उसी जाति की फेवर का निर्णय करेगा। तो स्व को अगर स्व ही जान ले तो मन बुद्धि उसमें है ही, एक बाबा थे उन्होंने यात्रा की, फिर देखा कि बाहर कब तक प्रवृत्ति, कब तक घूमे। एक बड़ा विशाल वट वृक्ष था, बाबा ने निश्चय कर लिया, वहां कुटिया बना ली। बोले वट वृक्ष की छाया जहां तक जाती उतने से बाहर नहीं जाएगी, तो उनको लोग दरकतिया बाबा बोलने लगे। दरकत से बाहर नहीं जाए, तो अखंडानंद जी उनसे मिलने गए कि बाबा भगवान में मन बुद्धि लग जाए, तत्व निष्ठा हो जाए। तो बाबा ने कहा अच्छा गुरु जाओ, कल शाम को लौटना, भगवान के सिवाय कौन सी चीज है जहां मन बुद्धि जाती है, और भगवान में मन लगे वो कौन चाहता है? तो ये तो सतपात्र थे, शांतनु, बाद में अखंडानंद जी बने। खोजते खोजते कि जब सारा पसारा भगवान का है तो फिर गायक दिखती है, लेकिन गायक की आंखें जिसकी सत्ता से देखती वो कौन, गायक का शरीर जिसकी सत्ता से चलता है वो कौन, पक्षियों की किलहोल किसकी सत्ता से। तो और सारा जगत जब ब्रह्म का विवर्त है तो मन बुद्धि ब्रह्म परमात्मा के सिवा और जगह कहां जाएगी? इस प्रकार का ज्ञान होने से विश्रांति आ जाती है तत्व में। न शरीर मान इंद्रियां ये देखना बंद करना पड़ता है, और न इनको मैं मेरा मानकर जगत को सत्य मानकर व्यवहार में उलझना पड़ता है। अपनी प्रवृत्ति शरीर की आवश्यकता कम करके प्रवृत्ति कम करते और विश्रांति पाते जाए तो तत्व में स्थिति हो जाए, तत्व में निष्ठा हो जाए। इसको बोलते हैं मुक साधन, कुछ न करने का साधन। सुबह नींद में से उठते हो तो क्या करते हो? कुछ न करो, देखो एक आध मिनट शांत। वो तत्व है, वो मैं है, वो आत्मा है, उसी से मन स्फुरता है, उसी से बुद्धि निर्णय करती, उसी की सत्ता से सुख दुख भासता है। सुख दुख आके चला जाता है, उस तत्व तो जो कहते हुए तत्व में मेरी निष्ठा हो तो मैं कौन हूं खोजो तो मिलेगा तत्व। श्वास चल रहा है, अपने तरफ से मत चलाओ। श्वास चल रहा है, श्वास अंदर गया सो, बाहर आए हम। दीर्घकाल के अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार हैं ना इंद्रियों में, मन में, संसार में सत्बुद्धि करके भटकने के। इसलिए वशिष्ठ महाराज ने राम जी को कहा, काले न परिपक्व थे। यह अभ्यास का मार्ग है, उसमें समय की आवश्यकता है। विचार मार्ग में हुई बस पति गयो, रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा तो निष्ठा ढीली रहेगी। इसलिए सत्वात संजायते ज्ञान, दिन को नींद करने से रजो तमोगुण बढ़े। शरीर फेटी है तो दोष है शरीर में, त्रिफला फाकला फाका करे ताकि पेट नाड़ियां सफा रहे। प्राणायाम क्या करे 20-25 सारा तंत्र ठीक रहे। लेकिन ये मैं ठीक हो गया या मैं बीमार हूं ये गलती ना आने दे। उठत बैठत ओई उठाने कहत कबीर हम उसी ठकाने, ठीक बैठक में भी हम ज्यों के त्यों। मौका मिले तो आकाश के तरफ खुले आकाश में नजर जमा के बैठे, सो हम जपे कभी खुले आकाश को देखे बन शांत तत्व में जाए। सफुर मन है, निष्फुर ब्रह्म है, तो पानी शांत है तभी भी पानी है और लहरियां है तभी भी पानी है, तो फुर रहा है तो भी ब्रह्म ही हो गया। लेकिन वो पहले विश्रांति का अनुभव करे तब फुरने में ब्रह्म दिखेगा। कभी थोड़ा जो सुना श्वासोश्वास की गिनती करते जाओ, आंख खुली, बंद रखो तो बंद में अगर अनुकूल पड़ता है तो अमावस्या दृष्टि, खुली में अनुकूल पड़ता है तो पूर्णिमा दृष्टि, और ज्यादा खुली में मन भटकता है तो फिर अर्ध उन्मूलित नेत्र प्रतिपदा दृष्टि ध्यान में, उसी का अभ्यास। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा अनन्यगामिनी, अभ्यास योग से युक्त हो जाओ, अपनी चेतसा अन्यगामिनी न होने दो। जहां जहां मन इधर उधर जाए कल्पनाओं में लाके उसी में लगाओ। एकाग्रता ही ध्यान का स्वरूप लेगा और ध्यान ही परमात्मा में परिपक्व स्थिति कराता। श्रवण से 10 गुना मनन, मनन से 10 गुना नित्य ध्यासन, 100 गुना वो ध्यानित होगा। विचार के द्वारा ध्यान, अथवा एकाग्रता का ध्यान जो अनुकूल पड़ता है। ये हो गया धर्म का मार्ग। अधर्म का मार्ग क्या होता है कि अधर्म का मार्ग होता है कि पहले दुष्ट का संग मिलता है। दुष्ट का संग मिलने के बाद असताम संगत दुष्टों का संग, फिर दूसरी सीढ़ी क्या है अधर्म भी। अधर्मा रतः अधर्म की प्रवृत्ति में लिप्त हो जाना। अमावस्या है तो क्या है, हम नहीं मानते, इसका है उसका मजा ले लो। तो पहले दुष्टों का संग, फिर अधर्म में रति ही पाप में रुचि हो जाएगी, फिर तीसरा अजित इंद्रिय, इंद्रियों को वश नहीं करना, रोकना नहीं, जब आए तो खा लिया, जो आए तो भोग लिया, जैसा है कर लिया, मजा मजा मजा। ये अधर्म का तीसरा सोपान है। पहला है असताम संगत, दूसरा है दुष्टों का संग। पहला है दुष्टों का संग असताम संगत, दूसरा है अधर्म रता अर्थात पाप में रुचि, तीसरा है अजितेंद्रिय इंद्रियों को वश नहीं करना। अपना मंगल चाहे तो जिस जिस चीज के बिना आप नहीं रह सकते, ये भोगे के बिना, खाए के बिना, ऐसा करे के बिना, तो उन गंदी चीजों के, बोले हम भोजन के बिना नहीं रह सकते तो भोजन छोड़ देंगे। भोजन व्यसन नहीं है। रोटी दाल के बिना आप सब्जी रोटी से रह सकते हैं, अथवा चावल सब्जी से भी रह सकते हैं। तो ये आवश्यकता है। जो गंदी आदत पड़ गई वो तो पता चल जाता है कि इसके पान मसाला है या जो भी तामसिक गंदी आदत है, ज्यादा बोलने की आदत है, तो उसके बिना रह सकते हैं, ठीक काम चला सकते हैं। झूठ बोलने की आदत है तो झूठ के बिना भी, झूठ को कम करते करते झूठ से निवृत्त होने की भी हो सकती। तो जो जो इंद्रिय और मन के द्वारा पतन के तरफ ले जाता है, जो आप शास्त्र संत और श्रेष्ठ जनों के सामने नहीं कर सकते, अंतरात्मा रोके टोके धर्म के संस्कार, वो छोड़ने का हिम्मत करें। तो पहला हो गया दुष्टों का संग, दूसरा हो गया अधर्म में रुचि पाप में रुचि, तीसरा हो गया अजितेंद्रिय इंद्रियां को वश न करना, चौथा हो गया काम आत्मा अर्थात कृपण हो गए, पीछे की बात याद करके दुखी हो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, आगे की कल्पना करके ये छूट न जाए वो छूट न जाए ऐसा न हो जाए, ये कृपणता आ जाएगी, भय आ जाएगा। तो हजार प्रमोशन होने के बाद भी आत्मा की बढ़ोतरी नहीं होती, और हजार रुकने के बाद भी आत्मा की कटौती नहीं होती, तो ये जो भी होगा मरने वाले शरीर के लिए होगा, तो जो भी मिलेगा तो मरने वाले शरीर को मिलेगा, तो उसके लिए डरना क्या, और छूटेगा तो जो पहले नहीं था वही छूटेगा, छूट भी जाएगा तो क्या छूटेगा, अपने मैं को तो छोड़ नहीं सकते और शरीर को सदा रख नहीं सकते, ये न छूट जाए वो न छूट जाए, लेकिन ये अधर्म के कारण टेंशन तनाव और भय हो जाता है। तो असताम संगात, जिनके स्वभाव में संतत्व नहीं है, शास्त्र ज्ञान और संयम नहीं है, ऐसे लोगों के संग से जीवात्मा का पतन होता चला जाता है। फिर मकान बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, नौकरी बढ़िया है, लेकिन शांति नहीं। एक दो आदमी की ये हालत नहीं है, करोड़ों लोग बेचारे खाम खा दुखी हो रहे, अकारण परेशान हो रहे। इतनी सुख सुविधा होते हुए भी पच रहे, भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, इसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा करे, ऐसा करे। ये आवश्यकता, कामना और दुख जब होता है तो समझ लेना बेवकूफी का फल है, ना समझी का फल दुख है। जब जब दुख आए, दुख ना समझी से दुख आता, फिर चाहे भूतकाल की याद करो और आप शोक करके दुखी हो, चाहे भविष्य की कल्पना करके भय करके दुखी हो, चाहे वर्तमान में लोलुपता करके, आसक्ति करके, राग द्वेष करके दुखी हो, लेकिन बेवकूफी के बिना दुख नहीं हो सकता, क्योंकि दुख प्रकृति ने नहीं बनाया, दुख परमात्मा में भी नहीं है और दुख हम चाहते भी नहीं। लो तो ना समझी का नाम है दुख। ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, दुनिया ऐसी क्यों है, ऐसे क्यों है, बड़ा अन्याय हो रहा है। अरे बुद्धू, भगवान इतनी सृष्टियां एक तुमको दिखती, ऐसी तो कई कई सृष्टियां हैं, इतनी सृष्टियां चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, तो तुम्हारे से उनकी अक्ल क्या कम हो गई जो तुम जजमेंट देते हो, निर्णायक बनते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। मन को समझाओ कि बेवकूफ नंदन, अगर तेरे चाह का होता रहे ऐसे, दूसरा भी जैसा चाहेगा ऐसा होगा होगा, तो सबके चाह के अनुसार हो तो क्या संसार चल सकता है क्या? तो किसकी इच्छा पूरी होगी? कभी किसी की, कभी किसी की, थोड़ी उसकी, थोड़ी उसकी, धक्का मुक्की से गाड़ी चलती रहती। और कुछ मेरा धंधा ज्यादा चल जाए, चल गया तो वो चीजों में आसक्ति होगी और नहीं चला तो दुख होगा। जो चलना होगा वो चलेगा, अपने तरफ से पुरुषार्थ करो, लेकिन आसक्ति आग्रह नवग्रह इतना दुख नहीं देते जितना अपने मन की बेवकूफी का आग्रह दुख देता है। पत्नी ने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। एक आर्किटेक्ट जा रहा था, थक गया, रास्ते में पीपल के नीचे जरा बैठा, लेट गया, ठंडी ठंडी हवा आ रही, आर्किटेक्ट की खोपड़ी चली कि ओ माय गॉड यू फॉर गुड आइडिया, ओहो तुम अपना कुछ डिजाइन भूल गए, क्या है आइडिया भूल गए, 1 किलो का भी बेला नहीं होता वजन में और फल लगते 10-10 किलो के कद्दू, कोरू लगते हैं, तरबूज लगते, और यहां 200 मन का पेड़ है और फल लगे जरा से, जितना पेड़ उसका फल भी ऐसा होता तो अच्छा लगता, इतना बड़ा पेड़ और जरा जरा फल लगा दिए, आप यहां भगवान नो गॉड आप मिस कर गए आपके आइडिया। इतने में हवा का झोंका लगा और एक फल गिरा आंख पे तो आंख हो गई लाल, टमाटर बोलो हो सॉरी सॉरी, अगर वहां कद्दू लगा देता तो क्या हाल होता। तो जो ईश्वर की सृष्टि में नुक्स निकालते या अपनी इच्छा के गुलाम बन के ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसने ऐसा क्यों करा, उसने ऐसा क्यों करा, वे लोग दुख मेकर हो जाते, दुख की फैक्ट्री चालू कर देते। उन्हीं बातों को याद करते करते एयर कंडीशन में भी हॉट कंडीशन बना देते, क्या ख्याल है? सुविधाओं में भी परेशानी बना देते, वो फुटपाथ वाले के पास सुविधाएं नहीं है लेकिन सोचने का तरीका, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, क्या ले जाना है, हम मजे से गाना गा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, भट्टा कटा बैठा। तो फुटपाथ पर रहने से सुख मिलता है ऐसी बात भी नहीं, वहां भी अगर अधिक खाता पीता व्यसन और अधर्म करता तो वहां भी परेशान है। न फुटपाथ पे सुख है न महल में सुख है, सुख तो वहां है जहां संत का मन ठहरता है। स्वर्ग में भी सुख नहीं, नरक में भी सुख नहीं, माई होने में भी सुख नहीं, भाई होने में भी सुख नहीं। अपने को पहचान ले, विश्रांति पाले, मस्त सुख। ये बात भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कही। तो अधर्म की सीढ़ी छठी क्या है? लुब्ध अर्थात लोभ। कहीं से भी विषय विकारी सुख मिला तो अधिक अधिक अधिक, तो उसमें ज्यादा। बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती नाश हो जाए। सातवा है स्त्रैण अर्थात स्त्री पुरुष संबंध। जन्म जन्म मिलते रहे, ये मेरे कहने में चले, ये ऐसा नहीं करे, वो ऐसा नहीं करे, इससे भी दुख बनाते, ये भी अधर्म का ही बेटा है। पार्वती जी सती जी जा रही है दक्ष जी के यज्ञ में, भगवान शिव जी की इच्छा नहीं थी, क्योंकि यज्ञ ने स्टंट, दक्ष ने स्टंट से यज्ञ किया था, कुभाव से यज्ञ किया। शिव जी जानते थे, सती को बताया, लेकिन सती को मां की ममता, बहनों की ममता, अपने जीजाओं से मिलने की ममता वो गई। तो शिव जी दुखी नहीं हुए, शंकर सहज स्वरूप संहारा लागी समाधि अखंड पारा के होता रहता है। मन भिन्न भिन्न है अवश्य, चलो शांत हो। बाद में सती को पश्चाताप करना पड़ा, बहुत तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने को। तो सातवां है ये स्त्रैण, स्त्री पुरुष में वस्तु में बंध जाना, और आठवां अधर्म का सीढ़ी क्या है? भूत वितंसक अर्थात दूसरों को दुख पहुंचा कर भी भोग और मजा और बावाई चाहिए, चाहे पब्लिक पीड़ित हो जाए, तप जाए, भीड़ इकट्ठी करें और अपना बस जाए घूस, पैसे इकट्ठे करें, नौकर भूखे रहे, चाहे कैसे भी रहे, लेकिन अपने पास है, ये नौवां पाप आ जाता है। अभिधाना अविधान अर्थात शास्त्र के विधान के बिना विरुद्ध आचरण करना, मांस खाना, दारू पीना, भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी की उपासना करके भी कुछ किसी का टांग तोड़ना करवाना या कुछ पाना, ये अविधान रूपी अधर्म नौमा पग चरण है। अवशोजन तो अर्थात पराधीन पशु की तरह हो जाता है, लग जाता है, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक का मैंने व्याख्या बताई आपको। श्रीमद् भागवत में आता है भागवत का दसवां स्कंध 27वां अध्याय 28वां श्लोक, ये धर्म के 10 चरण, इनसे बचना चाहिए। काल उसे कहते हैं जिसमें कर्म की संबित होती है और आत्मा उसे कहते हैं जिससे मैं उठता है। मैं को आत्मा कहते हैं। अगम शास्त्र किसको कहते हैं? जो धर्म अधर्म का बोधक होता है। लोक किसको कहते हैं? कि बोले स्वर्ग लोक, नरक, मनुष्य आदि लोक, ये सब उस ब्रह्म परमात्मा में, जैसे आत्मा के सत्ता में सपने की चीजें पैदा होकर बदल बदल कर छू हो जाती है, आत्मा अबदल है, ऐसे वास्तविक तत्व अबदल अपना आत्मा, ये सब खेल मात्र है। तो इंद्रियां बुद्धि मन मिटने से भगवान मिलते ऐसी बात नहीं, और उसके अनुसार जो आए उसको मजा दिलाते जाए तब भी भगवान मिलते ऐसी बात नहीं। धर्म अनुकूल, धर्म से वासनाओं को नियंत्रित करे, आवश्यकताएं पूरी करे और वासनाओं से बचे। शरीर की आवश्यकता पूरी करो, खाओ पियो सो, लेकिन मजा लेने के लिए नहीं। पति पत्नी का व्यवहार करो संतान को जन्म देने के लिए। तो कोई लोग तो समाधि में बंधे हैं, समाधि लगेगी तब सुख होगा। तो कोई विक्षेप में बंधे हैं, कैसे नाचेंगे गाएंगे खाएंगे तब सुख होगा। कोई भोग में बंधे हैं, कोई योग में बंधे हैं, कोई भविष्य में बंधे हैं कि अभी तो दुखी हैं लेकिन बहू आ जाए आराम से फिर भजन करेंगे तभी सुखी होंगे। कोई भूतकाल में बंधे के पहले सुख था, ऐसी अवस्था आ जाए यार बच्चे थे तो कैसा था, अब मूर्ख वो बचपन आने वाला नहीं, काहे को परेशान होता, शादी नहीं की थी तभी सुखी था, तो किसने बोला कर, अरे पहले ऐसा था, पहले जैसा ध्यान में दिखता था अभी नहीं दिखता है, रो रहे, अरे जो देखा सो देखा, नहीं दिखे तो नहीं दिखे, एक जैसा नहीं रहता। अकबर ने कहा कि राज्य बदल जाता है, राज्य तो राजा का सदा रहना चाहिए। मंत्रियों से पूछा क्या ख्याल है, बोले जी हजूर, राज्य छूट जाए सत्ता छूट जाए ये अच्छा लगता है? बोले नहीं, राज्य तो सदा बना रहे, राजा और राज्य सदा बना रहे। तो मूर्ख मंत्रियों ने चमचों ने कहा जी हजूर, लेकिन बीरबल चुप रहा। बोले बीरबल तुम कुछ टिप्पणी नहीं करते? बोले हजूर, अगर सदा राज्य राजा का बना रहता तो आप अभी राजा नहीं हो सकते थे। किसी का राज्य गया तब आप राजा हैं, और आपका जाएगा तब कोई बनेगा। तो सदा क्या रहेगा? तो जो परिवर्तनशील संसार है उसमें कहीं अच्छा लग गया तो बोले बना रहे, बना रहने वाला नहीं, हो जाओ दुखी, ये न हो जाए वो न हो जाए, होने का इतना दुख नहीं होता जितना न हो जाए उसके भय होता है, मरने में इतना दुख नहीं होता जितना मरने के भय में दुख होता है, बेइज्जती में इतना दुख नहीं होता जितना बेइज्जती के भय में दुख होता है। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? अरे लाखों लाखों जन्म बीत गए बेटे, लाखों लाखों बार निंदा हुई, लाखों जन्मों में लाखों बार स्तुति हुई, लाखों सुख मिले लाखों दुख हुए, तो ये जरा सा जीवन है तुम्हारा। देवताओं के 60 दिन तुम्हारे 60 साल हो जाते, और ब्रह्मा जी के एक दिन में देवताओं के 1400 साल बीत जाते। काहे को चिंता करे, काहे को टेंशन करे, मेरी शादी कहां होगी पता नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्या करें, विकल्प, ये छोटी छोटी बातें कल्पना करके मन बुद्धि में उलझ उलझ के आदमी परेशानी बना देता है। शास्त्रीय ढंग से सोचने का तरीका नहीं, शास्त्रीय ढंग से खान पान का तरीका नहीं, तो अधर्म के संगियों के संग में आकर धार्मिक आदमी भी बिचारे दुखी हो जाते। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। जो ब्रह्मांड को धारण करने वाली भगवान की धारणी शक्ति है उसको बोलते धर्म, जिससे हम और हमारे संपर्क में आने वाले सुख को, शांति को, आनंद को, वैभव को प्राप्त हो। तो बोले महाराज कहां ये धर्म से वैभव को कहां प्राप्त हो, देखो अधार्मिक आदमी इतना बड़ा मकान है, वैभव है, और इसको तो छोटा है। ओहो, बाहर की वस्तु को वैभव ही कहा जाए ऐसा नहीं है, आत्म वैभव होता है। बड़ा मकान है और सुखी नहीं है तो वो दरिद्र है, बड़ा धन है, बड़ा मकान है लेकिन पाप के बिना उसको सुख नहीं मिलता है तो दरिद्र है। यहां आत्म वैभव की बात है, और बाह्य वैभव भी ऐसा नहीं कि धर्म दरिद्रता लाएगा, नहीं नहीं, धर्म न दरिद्रता लाता है न बाह्य वैभव की आसक्ति लाता है। सत उपयोग, मन का सत उपयोग, बुद्धि का सत उपयोग, वस्तु का सत उपयोग, धर्म माना सत्य में स्थिति करने के लिए आपके संपर्क में आने वाले का भी सत्य के तरफ झुकाव कर, सत्य से श्रुत बना, श्रुत से श्रद्धा, अर्थात सत्य स्वरूप तत्व को पाने के लिए एक होता है विवेक, दूसरी होती है श्रद्धा। जिसका विवेक तीव्र है, अनित्य शरीर, अनित्य संसार, उसको जानने वाला नित्य, मैं कौन हूं, विवेक तीव्र हो तो विवेक के द्वारा जान लेगा अपने स्वरूप को। और जिनका विवेक कमजोर है तो उनकी श्रद्धा, श्रद्धा किसको बोलते, कि जो दूसरे के अनुभव से सीखने की योग्यता, उसको श्रद्धा बोलते, दूसरों से फायदा उठाने की योग्यता का नाम श्रद्धा, दूसरों से सत्य का फायदा उठाने की योग्यता श्रद्धा है। और ये जन्मजात मनुष्य में है। स्कूल में जाते तो बच्चे थोड़ी बोलते कि ये क ऐसा क्यों, ये एक ऐसा क्यों, मानकर ही तो पढ़ते। तो जब व्यवहार में भी श्रद्धा के बिना प्रगति नहीं होती तो परमार्थ में भी श्रद्धा, और श्रद्धा से विवेक जगे, और विवेक से श्रद्धा का फल जगे, एक दूसरे की सापेक्ष पोषक है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, लेकिन विवेक तीव्र है तो भी तत्व को जान लेगा, श्रद्धा तीव्र है तो तत्व को मान लेगा, मान लिया तो जान लिया। कोई योग के द्वारा जानते, कोई तत्व विचार के द्वारा जानते, कोई भक्ति भाव से जानते, कोई तत्ववेता महापुरुषों के वचन मानकर जान लेते, चार तरह के हो जाते। मेरे को अनुभव हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि तो मैं भी तत्व ब्रह्म, लेकिन बापूजी के सत्संग में इतने लोग आते और इतना अनुभव की बातें बोलते, मेरे तो नहीं आते, तो ये थोड़ा सा संशय होता था। तो एक दिन सुबह बापूजी ने कोई ग्रंथ किसी को दिया पढ़ने को, और सुबह 4-5 बजे, तो बापूजी तो समझ गए थे, तो मेरे को लक्ष्य करके बापूजी ने कहा कि कुछ लोगों के मन में होता है कि भाई मैं असंग हूँ, चैतन्य हूँ, ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, अनंत है, लेकिन भाई साईं तो साईं का ब्रह्म ज्ञान के साथ मैं क्या बता। अरे भाई, हम तो गीता सिर पर उठा के बोलते हैं कि भाई जो लीला शाह है वो ही आशाराम तुम हो। मैं गा तो श्रद्धा ने कितनी मेहनत हटा दी। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा श्रद्धया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरि। और श्रद्धा हमेशा, आचार्य विनोबा भावे कहते, श्रद्धा हमेशा अंधी होती। श्रद्धा अगर तर्क करने लगे तो श्रद्धा कहेगी। श्रद्धा में विवेक होता है, विचार होता है, कुतर्क नहीं होता। और अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा जो बोलते हैं लोग, तो उनसे पूछो कि तुमने अंधश्रद्धा की कि नहीं। सब बातें देखकर तुम मानते हो कि अंधश्रद्धा से मानते हो। अपने बाप को किसने देखा, देख के मानते हो कि मां ने कहा या किसी ने कहा ये तेरा बाप, तब मानते हो। रसोई पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है कि झूठा नहीं किया होगा। हजाम पे भी श्रद्धा करनी पड़ती है कि यही करेगा, यूं नहीं घुमाएगा। ड्राइवर पर, पायलट पर भी श्रद्धा करके टिकट लेकर बैठना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो अर्जुन को। अर्जुन की श्रद्धा थी तभी तो कृष्ण के आगे घुटने टेके, फिर भी गीता में आया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और अष्टावक्र कहते श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। वेद में तो श्रद्धा सुक्त है, श्रद्धा प्रातः काले श्रद्धा देवी हम तुझे प्रार्थना करते, हमारे हृदय में अविचल भाव से रहो। मध्याह्ने संध्या विंदति, मध्याह्न काल संध्या के समय प्रार्थना करते कि हमारी श्रद्धा दृढ़ रहे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। अश्रद्धा चली गई, अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा करके श्रद्धा को तोड़ दिया तो फिर अधर्म के 10 दोष आ जाएंगे समाज में। ये भागवत का श्लोक है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा। हमारी मूर्ति में श्रद्धा थी, भगवान में श्रद्धा थी, तभी हम नीची हल्की जिंदगी से बच पाए। हमारे साधकों के या धार्मिक लोगों की श्रद्धा है इसलिए मानसिक टेंशन से बचते। जहां धर्म सभाएं नहीं है, मंदिरों का महत्व तो नहीं है, वहां विदेशों में लोग बेचारे कितने दुखी हैं, कितने अशांत हैं। मानसिक रोगियों की संख्या कितनी ज्यादा है। क्या आप हिंदुस्तान में मानसिक रोगियों की भीड़ बढ़ाना चाहते क्या? भले उसकी अंधश्रद्धा है लेकिन उसको शांति तो मिल रही है। चलो भगवान के पास गए तो अभी विश्लेषण विभाग जो दुनिया के कई देशों का विश्लेषण किया कि आत्महत्याएं कौन सी जाति में ज्यादा होती, तो बोले सबसे कम में कम जाति, कम से कम आत्महत्या के केस हिंदुओं में बनते, क्योंकि उनके धर्म में श्रद्धा है और जूझने की शक्ति देती श्रद्धा। विघ्न बाधा और दुखों से जूझने की और शक्ति देती है और सहन शक्ति देती, इसलिए हिंदुओं में आत्महत्या के केस सबसे कम बनते। तो अब अपने को क्या करना चाहिए? अपने को भगवान में प्रीति और संसार से, संसार की शरीर की आवश्यकता और अपनी आवश्यकता ईश्वर से पूरी होगी ये समझ लो। शरीर शमशान की कब्रस्तान की डिपॉजिट है, शरीर छूट जाएगा लेकिन आत्मा रूह अमर है। वो आत्मा परमात्मा को पाए बिना उसको चैन नहीं पड़ेगी चाहे कितने जन्म भटके। अभी पालो तो अभी अशांति, अभी आनंद, अभी तृप्ति, और आत्म तृप्ति पाने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और बुद्धि में नित्य नवीन प्रकाश और ज्ञान आएगा। आत्मलाभात सर्वलाभम्। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मसुखात परम सुखम न विद्यते। उस आत्मा परमात्मा के सुख के आगे दूसरा कोई बड़ा सुख नहीं, इंद्र का सुख भी कुछ नहीं। आत्मज्ञान से बढ़कर दुनिया का कोई ज्ञान नहीं, आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। डॉलर की तो ऐसी तैसी। ये मनुष्य जीवन प्लेटफार्म है। आप 84 लाख नरकों में जाओ तो आपकी मर्जी, स्वर्ग में जाओ तो आपकी मर्जी, भगवान के धाम में जाओ तो आपकी मर्जी, और भगवान जैसे भगवान है उस तत्व को पाकर व्यापक ब्रह्म हो जाओ तो आपकी मर्जी, जीवन मुक्त हो जाओ। वो ही सुख अच्छा है। सृष्टि के पहले जो सुख स्वरूप था, अब भी जहां से सुख की झलक आती उसी को गहरे में जाओ, गहरे पानी पैठ। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। इंद्रियों के और संसार के किनारे पे बैठी, भगवत रस में हम गोता नहीं मारते। तो ध्यान में ही गोता लगता है, नहीं ज्ञान में भी गोता लगता है। विवेक से दुख आया तो उसको देखो, क्रोध आया तो उसको देखो, चिंता आई तो उसको देखो, ये गोता लगेगा ज्ञान, ध्यान में गोता लगा। मेरा क्या होगा, मेरे में बहुत बुराइयां है, ना ना बुराई है तो शरीर में है, मन में है, इंद्रियों में है, मेरे में तो मैं चेतन आत्मा हूं, मेरे में बुराई घुस नहीं सकती। सूरज को दमक दिमक नहीं लग सकती, क्या ख्याल है? लकड़ी को दिमक लगती, ऐसी सूरज को लगेगी क्या दिमक? ऐसे सूर्यों का सूर्य ज्ञान स्वरूप मेरा आत्मा है, परमात्मा है, मैं उसी का बालक। विकार आए तो मन में, मैं मन का गुलाम नहीं बनूंगा। हरे ओम 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 बल। हरे ओम 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 आनंद। हरे ओम 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 चेतना। हरे ओम 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 आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। चिंता विकार पाप, इनका चिंतन क्यों करो? चिंतन करके चिंतित क्यों होते? चिंता से चतुराई घटे। ओ मेरो चिंत्य होत नहीं, हरि को चिंत्य हो। हरि जो माया हर ले, पाप ताप हर ले और अपनी कृपा भर ले, उसको हरि बोलते। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरियो। ये तो चलते फिरते कर सकते ना, नाम कमाई, उससे भगवान के गुण भगवान का सामर्थ्य प्रकट होगा। हरिओ 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 हरिओ। होठों में बोलते जाओ ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति।